आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से होगा शुरू। आज सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू ढंग से चलाने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री के जापान दौरे का आज तीसरा दिन। कोबी शहर में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। पन्ना की जेके फैक्ट्री में हुआ हादसा, 4 लोगों की मौत, 16 घायलों का इलाज जारी। और प्रयागराज महाकुंभ में कल हुई घटना के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 4 फरवरी तक मेला क्षेत्रों में वाहन प्रतिबंधित। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र के पहले दिन कल संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि शनिवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होने के साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी, जो 13 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संसद में पहले से ही 16 विधेयक और 19 कार्य सूचीबद्ध हैं।
सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये बजट सत्र है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इश्यू आएंगे तो उसपे भी बीएसई में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पैनासोनिक एनर्जी से अपेक्षाएं जताई हैं कि वो राज्य में अपने स्किल डेवलपमेंट पहल को बढ़ावा दें, ताकि प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री अपनी जापान यात्रा के तीसरे दिन पैनासोनिक एनर्जी कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ कोबे में महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने सिसमैक्स कॉरपोरेशन सॉल्यूशन सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी और जीवन विज्ञान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री कंपनी को प्रदेश में मेडिकल डायग्नोस्टिक उपकरणों की विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव देकर आमंत्रित किया। राष्ट्र आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में गांधी समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर आज जापान के कोबे में इंडिया क्लब में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले महीनों में अपना मूलभूत एआई मॉडल तैयार करेगा। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में आज मीडिया को बताया कि मॉडल विश्व के श्रेष्ठ मॉडल की बराबरी वाला होगा। उन्होंने कहा कि इसके विकसित करने संबंधी प्रस्तावों की एक रूपरेखा तैयार की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश में अब स्वदेशी एआई मिशन को समर्थन देने के लिए 15,000 हाई एंड जीपीयू उपलब्ध हैं। डीप सीक की प्राइवेसी से संबंधित चिंताओं को लेकर श्री वैष्णव ने बताया कि इससे संबंधित जानकारी भारतीय सर्वर पर बहुत जल्द उपलब्ध होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया है। ये गत वर्ष से 150 रुपये अधिक है। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूं की बिक्री के लिए समय सीमा में पंजीयन जरूर कराएं। अभी तक किसानों द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। अभी तक 28,677 किसानों ने पंजीयन कराया है। सबसे अधिक पंजीयन जिला सीहोर में 6,122 किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
पन्ना जिले के पुरैना स्थित जेके सेम फैक्ट्री में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब ढहने से घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू पूरा हो गया। इस संबंध में पन्ना पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा ने जानकारी दी है कि घटना में 3 लोगों की मौत पहले हो गई थी और एक मजदूर की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई। सभी घायलों का कटनी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिजनों को राहत मुआवजा राशि भी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने जा रही हैं। विशेषज्ञों और आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार बजट में सरकार देश में सुदृढ़ ढांचा बनाने पर बल देते हुए विकास, रोजगार सृजन और वित्तीय प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। इस बजट से युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि स्किल इंडिया आज के लिए आवश्यक है। भोपाल की एक छात्रा ने कहा कि
भारत ऐसा देश है जहाँ यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मोदी जी का जो पर्सपेक्टिव है इंडिया को लेके, वो कहते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप्स करेंगे, तो उसके लिए यूथ को एम्पावर कैसे करेंगे आप? उसके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको स्किल इन इंडिया करना पड़ेगा। जो स्किल इंडिया इनिशिएटिव है उसको यूथ तक पहुँचाएँ। उसमें जो आपने इनिशिएटिव्स लाए हैं उसमें हमें बताएं यूथ को कि उसमें क्या क्या प्रावधान हैं, हम कैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि केंद्र गवर्नमेंट कितने भी अच्छे इनिशिएटिव्स ले आए, अगर जो जिनके लिए है अगर उन्हें ही नहीं पता होगा तो उतनी उपलब्धि नहीं आ पाएगी हमारे देश में। तो एज अ यूथ एजुकेशन के बाद मेरा मोटिव है मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले, देश की तरक्की में मैं अपना योगदान दूँ। उसके लिए मैं चाहूँगी कि मेरे अंदर स्किल सेट्स आएँ ताकि खुद को भी सपोर्ट कर पाऊँ, फैमिली को भी और देश को भी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और सचिवों की राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। डॉ. मांडविया ने कहा कि उनका मंत्रालय संगठित और असंगठित कर्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवास और निर्माण कार्यों में लगे कर्मियों के साथ साथ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों का कल्याण सरकार की उच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज संगम घाट पर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां कल 30 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान इन अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 4 फरवरी तक वाहन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात प्रबंध तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्य सचिव अनुराग जैन और रीवा संभाग के आयुक्त को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित और प्रभावी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए अब तक 53,000 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने अपना पंजीयन कराया है। फरवरी महीने के पहले सप्ताह में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था बनाई जा रही है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी से शुरू होगा। इस वर्ष मेले का विषय है हम भारत के लोग। 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में लेखक और पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकार गोविंद शर्मा सहित कई पत्रकार साहित्यकार उपस्थित थे। शिवपुरी में नवीन परिसीमन के अंतर्गत जिला, अनुभाग, तहसील, जनपद, पंचायत, नगरीय निकायों की सीमाओं में होने वाले परिवर्तन के संबंध में सुझाव के लिए आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। नीमच जिला मुख्यालय के समीपस्थ आयुष ग्राम दलावदा में आज आयुष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। झाबुआ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के रूप में मनाई गई। वहीं श्योपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिकों द्वारा गांधी पार्क से प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बापू के प्रिय भजनों का गायन किया गया। और शहीद भवन के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु गुना पुलिस लाइन परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।